السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو کافی دن سے میں اوائڈ کر رہی تھی، مگر چونکہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں، خاص طور پہ ان راتوں میں. ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بارے میں جتنے لوگ پریڈکشنز دیتے ہیں کہ اب بس اب آ رہی ہے اور اب آ رہی ہے، نہ تو اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایکوریسی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. تو اس کے وقت کے بارے میں ڈسکس کرتے رہنا یہ ایک لا حاصل گفتگو ہے. ہاں، مگر یہ ضرور سمجھنا چاہیے ہمیں کہ قیامت تو جب آئے گی تو وہ کلائمیکس ہوگا. اس کو دیکھنے کے لیے کوئی ایمان والا دنیا میں زندہ نہیں ہوگا، سب ایمان والے اس سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے. مگر قیامت سے پہلے کے جو فتنے ہیں ان کو ایمان والے دیکھیں گے، ان سے گزریں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوں گے. دنیا میں اس وقت جو حالات انفولڈ ہو رہے ہیں، تو یہ جو آخر کی نشانیاں ہیں ان کی ایک سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے. یعنی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسی طرف کو جا رہے ہیں. جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے، کئی چھوٹے فتنے ہیں، کوئی بڑے فتنے ہیں، بہت ساری نشانیاں آپ جانتے بھی ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں، جیسے جھوٹ کی کثرت ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، بے ایمانی ہے، حرام مال کھانا ہے، شراب پینا ہے، زناکاری عام ہو جانا ہے، گانا بجانا، میوزیکل انسٹرومنٹس کی کثرت، بے حیائی، بے حجابی، ننگا پن، اور بے دین حکمران، اس طرح کے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں بلکہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات، اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے. ان کے پیٹ کے فتنے کیا ہیں؟ یہ جو حرام چیزیں، شراب وغیرہ، اور ایسی غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، یا رشوت ہے یا سود ہے. اور شرمگاہ کے فتنے کیا ہیں؟ زنا، اور یہ قوم لوط کا جو عمل ہے، اور اس طرح کی گندگیاں، فحاشی کی ساری یہ چیزیں، قسمیں جو ہیں. اور ویسے تو بہت سارے فتنے ہوں گے، لیکن گمراہ کرنے والے فتنے ایسے ہیں جو انسان کو گمراہی میں بہت دور تک لے جائیں، یہ ہدایت کا کوئی امکان باقی نہ رہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا جو باعث بننے والی چیزیں ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز کس کو قرار دی ہے؟ زبان اور شرم کا. ان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. زبان تو آپ کو پتہ ہے کہ تو رکتی ہی نہیں ہے، چلتی ہی رہتی ہے، اور تھکتی بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی کہ میری زبان تھک گئی ہے بول بول کے، ایسے کبھی نہیں ہوتا. बोलते जाते बोलते जाते सारा दिन, जब तक सो नहीं जाते तो सोती शायद बंद रहती है लंबे टाइम तक, उसके अलावा तो सारा दिन चलती रहती। और फिर जब जायरा इतनी चलेगी तो फिर क्या क्या निकलेगा इससे, और शर्मगाह के फितने तो आज आप देख रहे हैं कि क्या क्या फितने हैं, जो यानी हमारे इर्द गिर्द हैं, शर्मगाह के फितने ही हैं ये सब। तो ये सारे तो पूरे हो चुके हैं, अब तो बड़े फितनों की बात चल रही है, जिनको के हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए वो तो कयामत की अभी ये निशानी नहीं पूरी हुई वो नहीं पूरी हुई, लिहाजा जो है ना अब आराम से बैठो चिल करो। इसलिए कि जो मैंने आपको बताया कयामत तो जब आनी है उस वक्त की हमें इल्म नहीं है, उसकी तो निशानियां पता है, लेकिन उससे पहले के फितनों का हम क्या करें, क्योंकि वो फितने वो होंगे जो कि ईमान को ले जाएंगे, इंसान को पता भी नहीं चलेगा। और हमें नबी अलैहिस्सलाम ने इन फितनों से वॉर्न किया है कि ये कैसे फितने होंगे, ऐसे के जो कोई चीज ना छोड़े, हर चीज को बहा ले जाएंगे, दीन को, ईमान को, माशरत को, तहजीब को, सबको बहा के ले जाएंगे। फरमाया गर्मी की आंधियों की तरह होंगे, कोई छोटे होंगे कोई बड़े होंगे, आते जाएंगे। और इवन यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ऐसे फितने होंगे कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे फितने आ रहे होंगे, जैसे तस्वीर टूटती है ना तो आप देखते हैं उसके दाने एक के बाद एक कैसे फिर गिरने लगते हैं, और आप उनको पकड़ते ही रह जाते हैं और आपके कंट्रोल में नहीं आते, इस तरह फितने होंगे। तो बेशक हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अभी कयामत की जो बड़ी वाली निशानियां हैं, जैसे फितना दज्जाल वगैरह है, ये पूरी नहीं हुई है, सूरज का मगरिब से निकलना है पूरा नहीं हुआ है, दाबतुल अर्द का आना ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो फितने हैं वो तो पे दर पे आ रहे हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा को खुतबा दे रहे थे, फरमाया मुझसे पहले तमाम अंबिया पर अपनी उम्मतों को नेकी की बातें बताना और बुराई से डराना वाजिब था। और फिर अब गौर से सुने इस बात को, इस उम्मत की इब्तदा यानी उम्मत मुस्लिमा की इब्तदा में तो आफियत है, ठीक है, उस वक्त तो आफियत थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे, उसके बाद ताबईन आए, तबा ताबईन आए, उसके बाद आफियत ही चलती रही। लेकिन आखिर वक्त में ऐसी ऐसी मुसीबतें और ऐसी तकलीफें आएंगी जिनका अंदाजा तुम नहीं कर सकते, फिर एक ऐसा फितना आएगा जिसका एक हिस्सा दूसरे को खुशनुमा बनाएगा, यानी पिछले जो फितना पहले आया था उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। और फिर मोमिन कहेगा ये फितना तो मुझे हलाक कर डालेगा, लेकिन वो फितना गुजर जाएगा फिर दूसरा फितना आ जाएगा, मोमिन फिर ये कहेगा ये फितना तो बस मुझे तो हलाक कर देगा ये, लेकिन वो भी गुजर जाएगा। बस जिसे जहन्नुम से बचना और जन्नत में दाखिल होना पसंद हो उसे मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौमे आखरत पर ईमान रखता हो और लोगों के साथ वही सलूक करे जो अपने साथ पसंद करता है। क्या फरमाया कि कैसे हम बच सकते हैं कि अल्लाह और यौमे आखरत पर ईमान और लोगों के साथ वो सलूक करना जो अपने लिए पसंद करता। तो इतने शदीद फितने होंगे कि बंदा कहेगा कि बस अब मैं गया अब मैं गया, और हर फितना पिछले फितने से ज्यादा ही मुश्किल होगा, पिछले को कुछ नया बनाएगा यानी उसमें इजाफा ही करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना के जो ऊंचे घर थे उनमें एक घर पे छत पे थे और सहाबा से पूछा जो मैं देखता हूँ क्या तुम देखते हो, तो उन्होंने अर्ज किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह गिरता हुआ देख रहा हूं, ये उस वक्त बताया गया था। तो अब आप देख लीजिए कि वाकई एक फितना आता है, हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा फितना है, लेकिन उसके बाद जब दूसरा आता है ना, ऐसे वाकई बारिश के कतरों की तरह, बारिश के कतरे रुकते थोड़ी हैं, फिर एक को आप देख रहे हो तो दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से होते। तो फितने ऐसे होंगे कि एक फितने को जब आप उसमें उसको देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यही सबसे बड़ा फितना है, ये क्या हो गया। लेकिन जब अगला आएगा ना, तो वो वाला पिछला वाला तो हल्का लगने लगा, वो तो कुछ भी नहीं था, ये तो उससे भी बड़ा आ गया। मसलन पहले कुछ चीजों को बेहयाई समझा जाता था, औरत के सर से दुपट्टा उतर जाता तो उसको बेहयाई समझा जाता था, बुरका उतरा तो बहुत बड़ी बेहयाई हो गई। और आज क्या हाल हो गया, अब तो लगता है वो भी कुछ बेहतर था, ये तो बिल्कुल ही आउट हो गए। इसी तरह और चीजों में भी आप देख लें, पहले वो ही चीजें बड़ी समझी जाती थी कि ये तो बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया, अब वो इतने आम है, अब उससे भी एडवांस लेवल के नए नए ऐसे गुनाहों के दरवाजे खुल गए हैं कि इंसान सोचता है वो वाले तो कुछ भी नहीं थे, ये जो अब हम देख रहे हैं, और रुकने का तो नाम नहीं ले रहे ना, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ऐसा वक्त होगा कि दुनिया में सिवाय मुसीबतों के और फितनों के कुछ भी नहीं रह जाएगा। नहीं, इंसान एक से एक फितने देख रहा है और दुनिया में वाकई इसके सिवा कुछ भी नहीं अब रह गया। हत्ता कि आपने फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी जब तक एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र पे से गुजरेगा तो कहेगा काश इसकी जगह मैं होता। ये नहीं कि उसको अपने दीन की बड़ी परवाह थी इस वजह से कह रहा है, बल्कि दुनिया की मुसीबतों से तंग आके कहेगा। दुनिया में इतनी मुसीबतें होंगी, इतने फितने होंगे कि वो कहेगा कि काश इसकी जगह पे मैं होता, मैं मारी यानी गया होता, इस कदर फितने होंगे। और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस है, ये फितने ऐसे होंगे कि बैठा हुआ फरमाया खड़े से बेहतर है, खड़ा चलने वाले से बेहतर है, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है, और जो शख्स दूर से भी इन फितरों की तरफ झांकेगा वो इनमें मुब्तला हो जाएगा। इस वक्त जो शख्स जहां कहीं पनाह की जगह पाए, पनाह हासिल कर, यानी जिधर हो ना उस पोजिशन में रहो, आगे नहीं बढ़ने की जरूरत। जो बैठा है वो खड़े से बेहतर है, जो खड़ा है वो चलते से बेहतर है, नहीं जहां पे हैं वैसे ही रहें। अल्लाह अकबर। तो हमें इससे पता चलता है ये दौरे फितन जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, इसने रुकना नहीं है कि हम कहेंगे भाई अभी इसके बाद शायद अब वो कोई ऐसे दिन आ जाएं, बस ये चीज खत्म हो जाएगी तो फिर देखना कितना से चैन और सुकून और ऐसे, आज ऐसे नहीं होना, बल्कि ये बढ़ते ही जाएंगे। और ये ना इंतजार करें कि हम पता नहीं अब सही हो जाएंगे तो हम फिर बिल्कुल नेक बन जाएंगे, नहीं, चूंकि हम ऐसे दौर में एंटर हो चुके हैं जो दौर है ही फितनों का, तो आप आगे से आगे और ज्यादा मुश्किल ऐसे फितनों को पाएंगे कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें सारी रहनुमाई फरमा दी ना, और फरमाया कि ऐसे फितने होंगे जो तारीक रात के टुकड़ों की तरह होंगे, जैसे अंधेरी रात होती है ना, उसके एक के ऊपर एक अंधेरा होता है, ऐसे होंगे और इतने खतरनाक होंगे, जिसकी वजह से ही मैं आज इस टॉपिक को कर रही हूँ, कि इतने खतरनाक होंगे कि एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम के वक्त मोमिन होगा जब सो जाएगा, सुबह को उठेगा तो काफिर हो गया, ऐसे लोगों की हालतें पलट जाएंगी, ऐसे कुफर की तरफ चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि उनके ऊपर कोई आके जादू कर देगा, मगर ये है कि फितने इतने होंगे ना किसी फितने में मुब्तला हो जाएंगे, कोई एक फितने में, कोई दूसरे में। आज कोई अपने घर में भी बैठा हुआ कहीं भी बाहर नहीं जाता, फितने उसके घर में आ गए, इंटरनेट पे बैठेगा वहां पे फितनों पे फितने, टर्बुलेशंस है। फरमाया लोग अपना दीन और ईमान दुनिया के बदले बेच डालेंगे। दीन बेच दिया तो काफिर हो गए ना। तो आपको ये बताने का मकसद क्या, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हमें ये बताया इतनी इसकी डिटेल्स कि भाई ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये सब बताने की क्या जरूरत है? इसलिए ताकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हों, ताकि कहीं हम इन फितनों का शिकार ना हो जाएं, ताकि हम अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें, अपने ईमान को इतना स्ट्रोंग कर लें कि हम इन फितनों के दौर में इससे गुजर सके। समझ लें, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। आंधी चल रही हो ना, बहुत तेज आंधी, बहुत तेज आंधी, जिसकी हवाएं चीजों को उड़ा के लेके जा रही हैं, उसमें आपको चलना है तो कैसे चलेंगे? आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी तो चलेंगे ना। आप अगर बेचारे बिल्कुल ही कमजोर से हुए तो आंधी तो उड़ा के ले जाएगी, गिरा देगी। अब आपने चलना है, उसी आंधी के अंदर चलना है, तो फिर कैसे चलेंगे? अपने आप को मजबूत करके। तो ये आंधियां हैं, ये जो फितने हैं ना, ये आंधी है, एक के बाद एक आंधी है, एक के बाद एक आंधी है। उसके अंदर हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए इतनी ईमान की कि हम इसमें से गुजर जाएं, और ये ना हो कि ये हमें साथ ही उड़ा के ले जाएं। और हर तरफ फितने होंगे ना, तो लोग फितनों का शिकार भी हो जाएंगे। अब उसके अंदर अगर आप देखने लगे तो आप सोचें कि भाई फलां भी ऐसे करता है, आजकल तो सारे ऐसे करते हैं, आपको क्या पता वो फितनों का शिकार हो गए हो, फितने उन्हें उड़ा के ले गए और हम भी उनके साथ वैसे ही होना चाहते हैं। और ये फितने जब आते हैं ना, तो अल्लाह ताला अलग अलग कर देता है, ईमान वाले अलग हो जाते हैं। कौन से लोग हैं जो अल्लाह ताला की जन्नत में जाने के काबिल हैं, जो वाकई ईमान वाले हैं? कौन से लोग हैं जो के वीक थे अपने ईमान में, सब छोड़ के बैठ गए? कौन से लोग हैं जो वापस कुफर की तरफ पलट गए? सब खर्रा खोटा अलग अलग हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जो हम अपने ऊपर ये एक कैमोफ्लाज सा करके बैठे होते हैं ना, कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे पर्दे रखे, कि जो हमने अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है कि हम बड़े दीन वाले हैं, लेकिन जिस वक्त फितने आते हैं ना, उस वक्त पता चलता है कि किसका दीन कितना है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इस्लाम अजनबी था और दोबारा अजनबी हो जाएगा। ये जैसे लोग कहते थे, ये क्या, ये नई सी बातें लेकर आ गए, ये नई सारी दीन, ये क्या, हमने तो नहीं अपने बाप दादा से ऐसा सुना। इस्लाम एक दिन अजनबी हो जाएगा। तो तूबा लिल गुरबा, तो खुशखबरी हो अजनबियों को, कि जिनको देख के लोग कहेंगे ये कैसे अजीब से फनेटिक से लोग, ये कैसे ऐसे लोग, खुशखबरी हो उनके लिए जिनको लोग डिसोन करेंगे, लोग कहेंगे कि ये क्या चीजें हैं, अजीब इनकी बातें हैं, पता नहीं कौन सी एलियंस उतरे में कहीं से। तो फितनों के ऐसे दौर हैं जो आगे आ रहे हैं और जिनसे हम गुजर रहे हैं, और एक के बाद एक फितने को एक्सपेक्ट करें। और ये भी चीज़ आपको मालूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये एक पेशीन गोई की थी, ऐसे लगता है कि एग्जैक्टली ऐसे ट्रू है। 1400 साल पहले ये बात बताई थी कि अनकरीब काफिर तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगे जिस तरह खाने वाले एक दूसरे को दस्तरखान की तरफ बुलाते हैं, कि आओ आओ खाना खाओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूल, क्या हम उस वक्त बहुत तादाद में कम होंगे इसलिए काफिर इस तरह हमें खाने के लिए दस्तरखान पे बुलाएंगे? तो आपने फरमाया, नहीं, तुम्हारी कसरत तो बहुत होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे पानी के ऊपर बहने वाली तिनके होते ना, इस तरह। वो देखा है आपने, पानी के ऊपर जो झाग या तिनके होते, किस तरह उनको पानी बहा के कभी इधर लेके जा रहा है, उनकी कोई अपनी कुछ हैसियत नहीं होती, कोई उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, इतने वीक होते हैं, जिधर पानी उल्टा के मारता है उधर पड़े होते हैं। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब भी खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल, वहन क्या है? आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, या हम मर ना जाएं। और दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा, हुब्बे दुनिया और कराहियतुल मौत, ये वजह होगी कि दुश्मन के दिल से रो भी खत्म हो जाएगा। वो कहेगा ये तो कोई चीज नहीं है, हर एक तुम्हें तरने वाला समझ के खाने के लिए दूसरे को बुलाएगा। और जो बताया गया था जैसे कि कत्लो गारत इतना आम होगा, ना किसी को ये पता होगा मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, ना कत्ल करने वाले को पता है मैं क्यों कर रहा हूं, ना कत्ल होने वाले को पता है मुझे क्यों कत्ल कर रहा है, ये क्यों मार रहा है। इतना खून बहाया जाएगा, ये हालात हो जाएंगे। तो ये है दौरे फितन जिसकी हमें तैयारी करनी है, और आगे अपनी जेनरेशंस को बताना है इसके बारे में कि ऐसा दौर है जो आगे है, जो मुश्किल है, और इसके अंदर क्या करना है, हमें किस तरह अपने ईमान को बचाना है, इसके बारे में वॉर्न करना है। अब ये ऐसे ही हमारे लिए पेशींगोयां थोड़ी दे दी गई हैं कि भाई हम इनको पढ़ के बस इंफॉर्मेशन ले लें और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। ये पहचाने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ऐसे ऐसा फितनों का दौर आएगा, तो फिर साहबा ने पूछा था फितनों से कौन बचेगा, फरमाया वो बचेगा जो इनसे वाकिफ होगा, और जो अपनी दुनिया में इतने मगन है कि उनको परवाह नहीं है कि कौन से फितने आ रहे हैं, और सिया बादल फितनों के हमारे घरों के करीब आ चुके हैं, उनको कोई परवाह नहीं, वो अपने पता नहीं कहाँ दुनिया में ऐसे खोए में कौन से फितने आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, कोई परवाह नहीं है, तो वो फिर साथ ही बह जाएंगे फिर। तो इस इनसे होशियार होने की जरूरत है। और जब हम देख रहे हैं ना इसको आता हुआ, अब आप देखेंगे सोशल मीडिया भरा पड़ा है तो जी बस अब होने लगा खत्म, एंड ऑफ टाइम फला ये, एंड ऑफ टाइम तो जब भी होता है, फितने तो लाजमी हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा फितना तो अभी आया ही नहीं है दज्जाल का, तो अभी हमारे ये हाल हो गए कि हम फितनों की रो में बह रहे हैं, जिधर को दुनिया जा रही है हम भी उधर ही चल रहे हैं। हमें तो कहा गया वतवासव बिल हक वतवासव बिल सबर करना, ये वो सूरा है ना जिसके जिसके बारे में इमाम शाफी ने फरमाया था पूरे कुरान में अगर सिर्फ ये सूरत एक होती तो तब भी काफी था, ये बताएगी कि खसारे से कैसे बचना है, हक के लिए खड़े होना है, हक के साथ खड़े होना है, और एक दूसरे को थाम के रखना है, एक दूसरे को भी नसीहत करनी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि तुम किनके साथ थे, उस इसके साथ थे या उस ताकत के साथ थे कि उसके साथ खड़े हुए थे, उसने देखना कि जब हक और बातिल की कश्मकश थी तो तुम किस साइड पे थे। और क्या हमारी अगली जनरेशन को पता भी है कि फितने आने हैं, क्या उनको पहचान है कि दज्जाल का फितना क्या होगा, इमाम मेहदी आएंगे तो क्या होगा, या उनके ग्रो में शामिल होने के लिए उनको पता है और उनको कैसे पहचानना है, या वो उस वक्त वो भी जाके गूगल करेंगे कि पूछेंगे उससे कि भाई अब इस वक्त क्या करना चाहिए। आज तो प्रोपेगेंडा वॉर है, सच और झूठ इतना मिक्स हुआ हुआ है, और आपको पता है ये किसकी निशानी है, डिसेप्शन किसकी निशानी है, दज्जाल की। दज्जाल का तो सबसे बड़ा जो टूल है वो ही क्या है, कंफ्यूजन, इसको समझ ही ना आए कि सही क्या और गलत क्या है, डिसेप्शन, जो जैसे है वो वैसे नहीं है, उसके पीछे कुछ और चीज है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना उसकी एक हाथ में जन्नत होगी और एक में जहन्नम होगी, और उसकी जन्नत जहन्नम है और उसकी जहन्नम जन्नत है, एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग है, आग पानी है और पानी आग है। अब आप इंसान को इसको कैसे समझे, अब समझ आ रही है ना कि ऐसे समझे कि यानी उसकी जन्नत जहन्नम है, जो चीजें वो दिखा रहा होगा ना लग्जरीज और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल और बड़ा जबरदस्त ऐशो आराम, वो जन्नत लग रहा है लेकिन असल में वो जहन्नुम है, उस चीजों के पीछे जाओगे तो जहन्नुम में पड़ जाओगे। क्या हमने बच्चों को ये सिखा दिया, ये पहले तो खुद सीखा है ये, और उसकी जहन्नुम जन्नत है यानी अगर कोई उसको नहीं मानेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी, उसका घर बार लुट जाएगा, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, यानी वो जिंदगी को हेल बना देगा, जहन्नम बना देगा। अल्लाह ताला की दीवी पावर से ही करेगा, लेकिन जहन्नम बना देगा। हमसे तो जरा सी भी नहीं चीज बर्दाश्त होती, थोड़ी सी भी हमसे कोई चीज छिन जाए तो हम तो अल्लाह माफ करे सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो वो जो उसको नहीं मानेंगे वो फिर कहेगा अब इसके लिए तो हर चीज बंद है, उसके लिए वो दुनिया जहन्नुम बना देगा, हालांकि इसी के अंदर उसकी जन्नत है। देखने में ऐसे लगेगा कि इतनी मिजरेबल लाइफ, इतनी मुश्किल, लेकिन यही सबर के दिन होंगे, उस वक्त सबर करना होगा। और ऐसे नहीं होगा कि आप दुआएं मांगेंगे आपके दिन बदल जाएंगे और जिंदगी जन्नत फिर से बन जाएगी और आप यही कहते रहेंगे मेरी जिंदगी जन्नत बन जाए, यानी वापस आप खुशियां लौट आए, क्योंकि फितना दिज्जाल है ही इसलिए ना कि टेस्ट हो जाए सबका ईमान। अब हम तो छोटी छोटी बातों के ऊपर डिप्रेस हो जाते हैं, अगर ऐसे मसले आते हैं तो हम अब दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, इतने दुखी होते हैं, कुछ करने के काबिल नहीं रहते, उनको इतना मिल गया हमें तो नहीं मिला, अब उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है, वो तो आगे निकल गए हम पीछे रह गए, हम तो अभी नहीं सोचों से नहीं निकल पा रहे, कहाँ वो इतना का मुश्किल टाइम होगा कि सोचें आप ना किसी की जिंदगी को हेल बना देना, लिटरली ऐसे करेगा कि सर्वाइवल के दरवाजे बंद कर देगा, रिस्क के, सुकून के, चैन के, तरक्की के, तरक्की तो खैर क्या सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, वो ही मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही सब्र का वक्त होगा, और ये तो दज्जाल का फितना तो सबसे ही बड़ा है, उससे पहले ही फितने शुरू हो जाने, तो बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि चैन सुकून और मजों के दरवाजे तो बंद हो जाएंगे। हाँ, जो इसकी मान लेगा उसके लिए मजा ही मजा है, उसके लिए एंजॉयमेंट है, उसके लिए फन है, उसके लिए लग्जरीज है, ठीक है, मगर वो है जहन्नुम। अल्लाहु अकबर। तो अब इंसान किसको चूज करेगा? अपेरेंटली देखने में तो, जाहिर में तो उसी के अंदर अच्छाई नजर आ रही होगी, क्योंकि जन्नत तो वो नजर आ रही ना, डिसेप्शन है ना, जन्नत है लेकिन है जहन्नुम। तो देखने में वो बेस्ट लाइफस्टाइल लग रहा है और दूसरी तरफ जहन्नुम है, जहन्नुम नजर आ रही है, तो इंसान तो जन्नत की तरफ ही भागेगा कि यहां पे सब कुछ मिल जाए, लेकिन जिसने उसको ले लिया फिर उसके तो बचाव का कोई रास्ता नहीं जहन्नुम से। अल्लाह अकबर। तो ये जो सबर के दिन है ये आगे से आगे और ज्यादा होंगे, इंसान को बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों को गिव अप करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन दीन नहीं छोड़ना। और इन फितनों में इसी तरह फिर इमाम महदी आएंगे, जबकि दुनिया के अंदर कोई हुक्मरान होगा, ये मुस्लिम हुक्मरान जो कि फौत हो जाएगा, तो उसके बाद इमामत का, खिलाफत का एक वैक्यूम होगा, कौन खलीफा बने, और इमाम महदी को नहीं पता कि मैं हूं इमाम महदी, वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, हजरत हसन से हैं वो, आगे उनकी औलाद से, यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से चल रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा। हाँ, जब वो तवाफ करने यहाँ पे आएंगे, मुल्तजिम पे होंगे, उस वक्त लोग इनको कहेंगे कि हम आपके हाथ में बैत करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनके अंदर वो क्वालिटीज दे देगा, एक रात में ही वो बदल जाएंगे सब, यानी एक रात में ही उनके अंदर वो अल्लाह ताला खसूसियात दे देगा, उससे पहले वो एक आम आदमी होंगे, कोई उनको पहचान नहीं रहा होगा, और आज ये झूठे लोग खुद ही खड़े होकर कहते हैं हम मैं इमाम महदी हूँ,
इमामदी तो खुद नहीं कहेंगे कि मैं इमामदी हूं, तो ये कहते हैं मैं इमामदी हूं, मुझे मानो। उनको तो लोग पकड़ के कहेंगे हमने आपके हाथ पे बैत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियां भी बता दी। और आपको पता है कि फिर उनके साथ, जाहिर है वो फिर इस्लाम का झंडा लेके खड़े होंगे, तो उनके साथ जो लोग होंगे, बल्कि ये कहें कि लोग तीन ग्रोहों के अंदर बंट जाएंगे, तीन उनके हिस्से हो जाएंगे। एक वो ग्रोह होगा जो कहेगा कि बगैर लड़े ही सब कुछ मिल जाए, हमें लड़ना ना पड़े, हम यानी उनको मानेंगे नहीं, इमाम हदी को नहीं मानेंगे वो, और वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई लड़ाई वगैरह के अंदर जाए, इन्वॉल्व हों, तो वो तो पीछे हट जाएंगे। ऐसे लोग, इनके बारे में कहा गया कि वो जो लड़े बगैर हथियार डालने को तैयार होंगे, जो नहीं मानेंगे इमाम मदी को, जो उनका साथ देने के लिए नहीं खड़े होंगे, ये वो होंगे कि जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, कभी कबूल नहीं करेगा। दूसरे वो होंगे जो इमाम मदी के साथ चले जाएंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे, एक यानी एक पूरा फैक्शन, एक पूरा ग्रोह जो है वो शहीद हो जाएगा, और ये बेहतरीन शहीद होंगे। और एक ग्रोह होगा जो कि फिर फतह पाएगा और वो गाजी होगा, और इनके ईमान को फिर कोई खतरा नहीं होगा, ये हमेशा ईमान वाले रहेंगे। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, जस्ट लेट्स बी रियलिस्टिक, आप इस पे यकीन करते हैं ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं वो हक है। आज मसलन बड़ी शौक से तो देख रहे हैं कि हाँ बस एंड ऑफ टाइम आ गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। मुझे ये बताएं कि आज को कल को आपको पता चलता है कि इमाम महदी आ गए हैं, जस्ट थोड़ी देर को सोचें, कितने लोग हैं हम में से जो उठ के कहेंगे हम इनके साथ जाते हैं, अपना सारे घर बार चीजें छोड़ के, काम कारोबार छोड़ के, अपने तायुशात छोड़ के हम इनके साथ लग जाएं। या हमारे बच्चों में कोई ऐसा हो कि जो इतनी यानी स्ट्रेंथ रखता हो ईमान की, कि लग्जरीज छोड़ के इन चीजों में यानी उनका साथ देने के लिए आगे बढ़ जाए। क्या हालात हैं हमारे, कुछ सोचिए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी ना तौबा कभी कबूल नहीं होनी, इसका मतलब मे भी बाद में जब इमाम महदी को बहुत फतूहात होंगी तो ये लोग पछताएं और ये लोग सोचें, लेकिन फरमाया इनकी तौबा कयामत तक कबूल नहीं होगी। क्योंकि तो ये वो लोग थे ना जो चढ़ते सूरज को सलाम, अब उन्होंने देखा इनके साथ तो जाने के अंदर बड़ी मुश्किल है, जैसे मूसा अलैहि सलाम के साथियों ने कहा था मूसा तू और तेरा रब जाके लड़े, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, भाई जब फतह हो जाएगी तो तब हमें बुला लेना। तो ये भी कहेंगे कि अब इस वक्त तो बड़ा भी मुश्किल है, ये तो नहीं काम हमसे होता, क्योंकि हमने अपने आप को इतना आराम पसंद कर दिया, हमें तो एसी ना मिले तो हम तड़प उठते हैं, हाय गर्मी हाय गर्मी, अब बस सारे काम छोड़ो पहले गर्मी का इनका इंतजाम करो, पंखा चल रहा है लेकिन अब एसी की आदत है हमें, हम तो नहीं इस तरह रह सकते, हमें तो अगर अच्छा साफ सुथरा टॉयलेट ना मिले तो अभी भी हमें मुसीबत पड़ जाती। हमने तो अपने आप को बहुत नाजुक मिजाज बना लिया वह, और कहाँ आप देख लें कि यही सूरह कहफ पढ़ने की क्यों तरगीब दी गई हर जुमे को, ये फितना दज्जाल से बचाएगी और फितनों से भी, और खासतौर पे उसकी पहली 10 आयतें, उसमें क्या है, आपको एक लाया है अमल मिल जाता है। सबसे पहले तो कुरान की ही बात है ना, अब कुरान की तरफ कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग समझने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहु इवजा, अल्लाह ताला ने तो ऐसी किताब उतार दी है, इसमें तो कोई टेढ़ नहीं है, उसमें ये न जालना माल अर्द जीनत अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो भी जमीन के ऊपर ना इसको इसको जीनत बनाया ताकि तुम्हें आजमा ले कि तुम इनमें से कौन से आसन अमल करने वाले, ये तो एक दिन अल्लाह ताला इसको चटियल मैदान बना देगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इस वक्त ये इसकी जो ब्यूटीज है ये तो तुम्हें देखने के लिए कि तुम्हें से कौन है जो इसके लिए फिसल जाएगा, तो ये तो हमें ये सिखाती हैं। सूरह कहफ की आयत। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि देखो कैसे कहफ वालों ने अपना ईमान बचाया था। आज कौन हो सकता है, चलो आज नहीं 10 साल में भी इसी ट्रैक पे हम चलते रहे जिसके ऊपर हम हैं, तो हम तो इस काबिल नहीं है। ये हम ईमान बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो, जरा सी भी, इवन अपनी जॉब तक छोड़ना, पहाड़ों में जाके रहना तो बहुत ही दूर का समझ लेना मामला। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? तो इन बातों में हमें बड़ा मजा तो आता है कहने में कि देखो बस जी कयामत अब करीब ही और ऐसे है। असल बात ये नहीं है, असल बात हमें इस चीज को समझना है कि हमारी तैयारी कितनी है। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियां बता दी ना, कि जब ये निशानियां आप देखना शुरू कर दो, ऐसे फितने देखना शुरू कर दो, तो अपने ईमान की फिक्र करो। पहले ऐसे फितने नहीं थे, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार ली, उस वक्त इतने ज्यादा कोई ऐसे फितने नहीं थे। चलो जी जैसे भी, वो बहुत इल्म भी नहीं था उनके पास, तो चले ही गए, उनका गुजारा चल गया। लेकिन आज ही चल सकता है गुजारा ऐसे? जिसको नहीं पता, जो हिदायत के रास्ते पे नहीं आया, तो ऐसे है कि तिनको कितना बह जाएगा, जैसे आंधियों के अंदर जो चीजें ऊपर ऊपर होती हैं ना, जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, वो उड़ जाती हैं। अगर ईमान मजबूत ना हुआ, और बहुत ज्यादा मजबूत चाहिए कि ईमान ना जाए, जाए जान चली जाए, ईमान नहीं जाए, तभी बच सकेंगे। और अगर ईमान के सिर्फ ऊपर ऊपर के दावे हैं, ईमान उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है जब ठंडे ठंडे मिल रहा होता है, लेकिन उस वक्त क्या हालात है जिस वक्त ईमान के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए, कुछ गिव अप करना पड़ जाए, उस वक्त कितने लोग होते हैं? हाँ चलो एक सदका बॉक्स में अपनी कन्वीनियंस से सदका डाल देना, ये तो आसान है। ईमान की वजह से जॉब छोड़नी पड़ जाए, कारोबार बंद करना पड़ जाए, हिजरत करनी पड़ जाए, कहीं और जाना पड़ जाए, घर बार बेच बाच के कहीं निकलना पड़ जाए, कितने लोग इस पे राजी होंगे? रोटी रोजी के मसले पड़ जाएं तो मुझे बताएं क्या होगा? फिर भी ईमान को इसी तरह पकड़ के रखेंगे? कितने लोग होंगे जो ऐसे रहेंगे? तो जरूरत इस चीज की है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तूबा लिल गुरबा, खुशखबरी हो अजनबियों को, ये दीन तो अजनबी हो जाना है। लोग पागल कहेंगे उसको जो अभी तक फिर भी इसी दीन पे चल रहा है, इतना इसे सारा कुछ अपना लुटा दिया, तो उन्हीं को खुशखबरी है। इस वक्त हमारे लिए जरूरत है। देखिए ऐसा नहीं होगा कि उधर इमाम मेहदी आ गए, हमने अपने स्विच जो ऑफ थे वो ऑन कर लिए, अब हमारा ईमान इतना ज्यादा हो गया, अब तो हम पता नहीं क्या बन गए। ऐसे नहीं होता। इसके लिए ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। इस विथ टाइम ऐसा होगा, हम अपने ईमान को बढ़ाने के लिए अभी से सोचें, मैंने अपना ईमान बढ़ाना है, कैसे होगा, मजबूत करना है अपने आप को। कोई वबा फैलती है ना, जब कोई बीमारी फैलती है, किनको लगती है सबसे पहले? जिनकी इम्यूनिटी सबसे लो होती है, इसलिए वो कहते हैं बूढ़े या बच्चे, वो भाई मास्क पहन के रखें या ये एहतियात करें, उनकी इम्यूनिटी सबसे लो होती है। जब फितने भी आएंगे तो जिनके पास ईमान की कमजोरी होगी, इम्यूनिटी उनकी नहीं होगी, सबसे पहले तो उनका ईमान जाएगा, उसके बाद फिर जो दूसरा एक पीछे होंगे, जो अपने आप को आज समझते हैं कि हम बड़े दीनदार हैं, फिर उन तक आएंगे, फिर उन उससे आगे, उससे आगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद सबर के दिन आ रहे हैं, तुम्हारे बाद सबर के दिन आएंगे, इनमें सबर करना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा जितना आग का अंगारा मुट्ठी में लेना, इतना मुश्किल हो जाएगा सबर। नाम तो ठीक है, सुना हुआ है, और बड़े इसके हम अजर भी पढ़ते हैं, बहुत वर्चूज हैं इसके, लेकिन सबर करना कितना मुश्किल है, हमसे तो सबर छोटी छोटी चीजों पे नहीं होता। कोई छोटा सा मसला आ जाता है, महंगाई हो गई, सब तो तुम्हारा सबर चला गया, रश बहुत ज्यादा हो गया, हमारा सबर चला गया, किसी ने कुछ कह दिया, हमारा सबर चला गया, बार बात 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 पे तो हमारा सबर चला जाता है, हमसे तो सबर नहीं होता। हम तो हज उमरे पे भी चले जाएं, हमसे वहां पे नहीं सबर होता, ये क्या मुसीबत है, ये क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पे तो कुछ भी नहीं होता वो। हाय यहां से धक्का क्यों पड़ गया, हाय उसने ऐसे क्यों कह दिया। देखिए सबर तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये ठंडे ठंडे घरों में अपने बैठ के ना, अपने ड्राइंग रूम्स में हम सोचें और दज्जाल की बातें कर रहे हैं और फितनों की बातें कर रहे हैं, ये तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बी रियलिस्टिक। इसलिए ये रमजान के अंदर ये बातें सुननी जरूरी हैं कि आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग इस हिसाब से कर सकें कि ये इतना इजी नहीं रहेगा कि हाँ हम कैमोफ्लाज करके जो आराम से बैठे हुए हैं तो कि भाई आग कहीं लगी हुई है वहीं लगी रहेगी, हम तक तो नहीं ना आ रही, हम तो मजे करते रहे, नहीं वो आग फैल रही है और हम देख रहे हैं दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं। और फिर भी अगर हम आंखें बंद करके रहें तो बड़ी बेवकूफी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तुम्हारे बाद सब्र करने के दिन आएंगे, इनमें सब्र करना बहुत मुश्किल हो, जैसे आग का अंगारा मुट्ठी में लेना, उस वक्त सब्र करने वाले के लिए 50 आदमियों के बराबर अजर होगा। तो साहबा ने पूछा था या रसूलल्लाह 50 उनके या हमारे, आपने फरमाया तुम्हारे में से 50 के, यानी वो सहाबा एक सहाबी नहीं 50 सहाबियों के बराबर उसको अकेले को अजर मिलेगा, क्योंकि हालात बहुत टफ होंगे ना। हम तो सहाबा कराम की जिंदगी को जब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं इतने टफ हालात में इन्होंने कैसे सरवाइव किया, इसका मतलब उससे भी ज्यादा टफ हालात आने वाले हैं। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि अच्छा हम लापरवाह होके, दीन भी चल रहा है ना साइड पे, दुनिया भी हमने चलानी है, और उस दिन हमने बात की थी दीन और दुनिया अलग अलग कोई चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है, हमने तो अपनी तजारतें भी चलानी है, फलाम भी चलाना है, जब दीन को इस तरफ रखो एक खाने में रखो, वो जिस वक्त रमजान आएगा उसको देख लेंगे, बाकी टाइम हमारा और चल रहा है, जिस वक्त के कोई और ऐसा मौका आएगा मसलन जिलहज के कोई दिन आ गए या ये रातें आ गई, उस वक्त तो हम मुसलमान बन गए, बाकी टाइम हमारी अपनी जिंदगी है। रमजान खत्म होते ही हमने सारा उतार के साइड पे रखा, चले कहाँ गई वो इबादत, कहाँ गई वो दुआएं, कहाँ गई वो माफियां, कहाँ गई वो रोने धोने, कहाँ गई वो तौबा सरा, कुछ भी नहीं याद, फिर वही रूटीन, फिर वही शब और रोज, सब किया धरा, वो जैसे कच्चा रंग होता है, कच्चा रंग कितनी जल्दी उतर जाता है ना, वो कच्चा रंग ही चढ़ता है और उसके बाद उतार के एक धो में ही खत्म। इधर शव्वाल का चांद नजर आया, उधर हमारी सब चीजें हैं अब साइड पे, जैसे कि हम किसी कैद से आजाद हुए हैं, शुक्र ही हुआ कि खत्म हुआ रमजान, बस आजादी मिल गई, अब जो मर्जी करो। याद रखिए अल्लाह ताला ने खरे और खोटे को अलग अलग कर देना, ये फितने इसीलिए आते हैं कि इंसान का पता चले किसके पास कितना ईमान है और किसके पास है भी कि नहीं। तो ये बातें ऐसी नहीं कि ये से हम इनको डिस्कस करके और बस उसके बाद रख दें और मैं आपको बता दूं ये चीज़ें आ रही हैं, आप भी थोड़ा डर गए, चलो आज का सेशन मुकम्मल हुआ, ये चीज़ें इसलिए हैं कि अब वी हैव टू बी सीरियस, हम आग को देख रहे हैं अपने सामने, इज नॉट अ जोक, आई एम टेलिंग यू। आप गफलत छोड़ दें, और इससे ज्यादा अच्छा कौन सा मौका होता है कि रमजान में हम थोड़ी सी इस चीज को सोचें, हमारी गफलतें हैं ये, देखें ये नहीं कि कोई मेरा ईमान को बहुत बढ़ के है तो मैं आपको लेक्चर दे रही हूं, मैं अपने आप को भी कह रही हूं, अगर हमारे ईमान मजबूत ना हुए तो ये जो फितनों का दौर आ रहा है ना आगे, ये इसमें हम ठहर नहीं सकेंगे, इतनी तेज आंधी है, तो गफलतें छोड़नी होंगी, कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होगी अपने वक्त की, दीन के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए। और लग्जरीज के इतने आदी ना बने कि कभी कोई चीज छोड़नी पड़ जाए तो आप मतलब इतने ही परेशान हो जाए कि आपको ऐसे लगे कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। इतने डिपेंडेंट ना हो ऐशो इशरत के सामान पे कि जरा सी कमी भी डिप्रेस कर दे और जिंदगी मौत का मसला बन जाए। और सूरह कहफ को हर जुमे को पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने से पहले ये जो दुआ पढ़ते थे, इस दुआ को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि फितनों से हमें बचा के रखना, हमारी नस्लों को बचा के रखना, कि हम नहीं देख सकते कि हमारी नस्लों में, हमारी औलादों में आगे पता नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे कि जिस तेजी से हालात दुनिया के बदल रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे चीजें पैक हो रही हैं, पैक हो रही हैं। जब पैकिंग शुरू हो जाए ना तो फिर रुख्सती का टाइम आ जाता है। तो गैर मुस्लिम तो उसको रिलीजियस वॉर कह रहे हैं और हमें कोई होश ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो क्राइस्ट का इंतजार कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा जागने की जरूरत है हमें, जिससे बाहर आने की जरूरत है, जिस ककून के अंदर हम बंद हैं, जिससे जरा होश में आने की जरूरत है। और अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि या अल्लाह ताला हमारे ईमानों को सलामत रखना। अल्लाह हमारे पास तो कोई चीज़ है भी नहीं, वैसे एक उसने भरम ही रखा हुआ है ये हमारा, पता नहीं हम कितने कच्चे हैं। ये तो अल्लाह ताला माफ़ करे कि किसी भी मुश्किल के अंदर आते तो पता चलता है कि हमारा हाल क्या है, हमसे कहाँ अंगारे हाथों में लिए जाएंगे। तो ऐ अल्लाह हमें फितनों से बचा के रखना और हमारी नस्लों को भी। तो यहाँ तक ही आप लोगों से बात करनी थी, इसके ऊपर ज़रूर गौर करिएगा और ज़रूर अपने लिए प्लानिंग करिएगा कि मैं आगे किस तरह से ईमान को मजबूत करूँ, क्या करूँ मैं, ऐसा थोड़ी सी तवज्जो इसके ऊपर करें। हर वक्त ये जो अपने आप को दुनिया में आगे आगे बढ़ाने की दौड़ लगी हुई है, इससे हटा के इस दौड़ में लगें जिसमें दीन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।